भरोसा रखने से तुम समझो जो भगवान का भरोसा रख करके हमारे जैसा यदि होता तो तुम हरि कथा में तुम्हारी रुचि होती, भगवान पर विश्वास होता, तब हमारे साथ में रह सकता था। तुम समझता है जो पैसे से सेवा होगी, इसलिए तुम हमारे सेवा के योग्य नहीं हो, जाओ घर में रह करके अभी भजन करो। नाम श्रेष्ठम मनमपि सची पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजबुरीपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडरोचस्यां विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषमनिभजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैरिजितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वां शतवृतिबन्दे पुनः प्रेमतस्त्वां शतवृतिबन्दे। कल हमने सनातन गोस्वामी जी की टीका के अनुसार हमने बतलाया जे किस प्रकार से यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा और किस प्रकार से कृष्ण उस लीला में से होते हुए भी जमलार्जुन का उद्धार किया और उनको प्रेम भक्ति प्रदान किया। इस प्रकार से अपनी लीलाओं के द्वारा स्वघोषम निमज्जन्तम्, स्वघोषम अपने गोपपल्ली को घोष कहते हैं, गोपपल्ली को अपनी लीलाओं के समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं। ऐसी ऐसी एक ही दो लीला नहीं, प्रतिदिन नई नई लीलाओं के समुद्र में समस्त घोष वासियों को निमज्जित करते हैं। घोष माने क्या? घोष माने एक और भी होता है, जोर से घोष करना, घोषणा करना। तो ये घोषणा कर रहे, देखो अपने ऐसे ही भक्तों को अपने लीला रूपी मधुर समुद्र में, अमृत समुद्र में मैं निमज्जित करता हूं, दूसरों को नहीं। इतिदृक स्वविलाल भी लीला भी नंद लीला भी रानंद कुंडे, ऐसे ऐसे एक दो नहीं, कृष्ण और बलदेव अभी छोटे छोटे अढ़ाई तीन वर्ष के बच्चे, अभी नंगे हैं, बड़े हृष्ट पुष्ट, बड़े सुंदर, बलदेव जी भी बड़े सुंदर, कृष्ण भी बड़े सुंदर, सब पल्ले की मोहल्ले की महिलाएं, गोप माताएं, वो सब वहां पर उनके घरों में आ जाती हैं इनका दर्शन करने के लिए। कोई कृष्ण का पक्ष ले लिया, कोई बलदेव का पक्ष ले लिया। भाई ये बलदेव कृष्ण से बहुत अधिक बलवान है, कोई नहीं नहीं ये नहीं, कृष्ण ही बलवान है। अच्छा तो ये दोनों मल्ल युद्ध करके देखें जो कौन है। तो कृष्ण पक्ष वाली कहती है यदि कृष्ण जीतेगा हम इसको हाथ में लड्डू देंगे, और उनके वाली कह रही है जी यदि बलदेव जीत जाएगा तो इसको लड्डू देंगे। बस लड्डू के लोभ से दोनों ताल ठोक करके जैसे लड़ते हैं ऐसे ताल और ऐसे ताल, और पहलवानों जैसा मल्ल युद्ध में जैसा करते हैं वैसा ही कर करके और लड़ने लगे। कभी ऐसे मालूम हुआ जी अभी बलदेव कृष्ण को पछाड़ेगा, ज्यों ही नीचे ले जाता है अभी ले जाने की चेष्टा, इतने में कृष्ण ने ऐसे दाव मारा कि बलदेव जी एकदम उलट करके नीचे आए, और उल्टे उल्टे गिरे किंतु गिरे नहीं, एकदम खड़े होकर के गिरे। सब लोग ताली बजा रहे हैं। इस तरह से दाव पेश बचपन से ही, अभी अढ़ाई तीन वर्ष के थे तब मल्ल युद्ध इस प्रकार से कर रहे। कभी बलदेव जी नीचे आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, दोनों का सम बल। इस प्रकार से सब तालियां बजाते, यदि कृष्ण नीचे गए तो बलदेव वाली, और कभी कभी कृष्ण वाली बलदेव को, इस प्रकार से लीलाओं के रस में निमज्जित कर देते हैं। सब लोग शुद्ध बुद्ध छोड़ करके और घर की बातें छोड़ करके बस उसी में निमज्जित हो जाते हैं उन लीलाओं की, और जब घर जाते हैं तो क्या करती हैं, इन्हीं लीलाओं का स्मरण करती हैं। कृष्ण ये घोषणा करते हैं किनके यहां, तद विदान, जो उनकी महिमा को जानते हैं, कृष्ण की महिमा को जानते हैं, उनके ऐश्वर्य को जो समझते हैं, कृष्ण की महिमा को समझते हैं, उनके निकट ये घोषणा कर रहे हैं। क्या हमारे गोप और गोपियों जैसा वो कोई विश्व में प्रिय नहीं है, उन्हीं के सामने ये लीलाओं को करते हैं, वशीभूत होकर के, उन्हीं का केवल मैं वशीभूत हूं, इस चीज को घोषणा करते हैं। तद्विदांग और क्या, तद्विदांग माने ऐसे भक्त लोग जो ये जानते हैं कि ये गोप गोपियों के ही वशीभूत हैं, और ऐसी लीला ब्रज में ही संभव है और दूसरी नहीं, वो जानते हैं। ऐसे लोगों की महिमा विश्व भर में प्रकाश करने के लिए नंद बाबा, जशोदा, उपानंद की पत्नी और रोहिणी मैया इत्यादि के संबंध में सोचा, इनके जैसा विश्व भर में कोई भी सौभाग्यवान नहीं है, मैं ऐसे लोगों के वशीभूत हूं, इन लोगों को बतलाने के लिए ये घोषणा कर रहे हैं, इसलिए घोष ही घोषणा कर रहे हैं। कैसी कैसी लीलाओं के लिए, देखो एक साधारण लीला के द्वारा समझो, गोप गोपियों को तो छोड़ दो। एक समय एक मथुरा की फल विक्रयणी अपनी टोकरी में पीले पीले आम, पीले लाल आम, अमरूद और दूसरे दूसरे फलों को भर करके चली बेचने के लिए, कहीं से सुन रखा जे नंद को एक लाला हुआ बड़ा ही अलबेला और सुंदर, अब तो कुछ बड़ा हो गया है इसलिए उसका दर्शन कराऊं। बहुत लोभ से कृष्ण का दर्शन करने के लिए, नंदलाल का दर्शन करने के लिए वो चली, जमुना नदी को पार कर गोकुल के नंद भवन में पहुंची, और वहां कृष्ण दर्शन करने के लिए लालायित होकर के उनके घर के आसपास ही वो करने लगी, आम लो, अमरूद लो, केले लो लो, बढ़हर के फल ले लो, बड़ा लुभावना, तुम लोग तो जानता ही नहीं होगा बढ़हर, ओ काली काली रस भरी जामुन ले लो, रस भरी ले लो, जैसे बच्चों के जीभ में पानी आ जाए सुन करके, और बच्चे अपनी मैया से कहेंगे मैया कुछ हमको फल ला दे, इसलिए जोर जोर से बोलने लगी। किंतु आई थी किस लिए? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। इसलिए धीरे 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 वो उसका फल लो ये कहने कहते 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 वो बदल गया, और टोकरी जो पकड़ी थी वो भी छूट गई, गोविंद लो माधव लो दामोदर लो, इस प्रकार से कहने लग गई, भूल गई वो। जानते हो कि गोपियां हैं या महिलाएं हैं, विशेष करके ब्रज की महिलाएं, एक घड़ा दो घड़ा तीन घड़ा चार घड़ा रखकर, और उसको पकड़ना नहीं है, वो चल रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं और वो घड़ा उसके सिर पर है। तो वैसे इन लोगों को जड़ियों के लिए फल विक्रेती के लिए टोकरी को पकड़ना जरूरी नहीं है, छोड़ करके गोविंद लो माधव लो दामोदर लो, इस प्रकार से वो कहती एकदम परम तन्मय हो गई। किंतु कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, सारी दिन घूमते हुए थक गई, किंतु आज कृष्ण उसको दर्शन ही नहीं दिए। साधारण को वो दर्शन नहीं देते, लौट गई। फिर दूसरे दिन कहा, आज यदि दर्शन नहीं हुआ तो अपने प्राणों को छोड़ करके चली आऊंगी, किंतु आज दर्शन जरूर करना है, आज क्या मैं फिर बोना प्राण टाओ कने रेखे आसबो आर एमनी चले आसबे शरीर, किंतु आज के दर्शन नमक करते ही होवे। ए दिने दृढ़ संकल्प करे छे डू आर डाई, जब तक साधक में ये भावना नहीं आएगी और सारी जितनी भी आकांक्षाएं जगत की हैं वो सबको छोड़ करके अब हमको कृष्ण का दर्शन करना ही है, हमको साधन ऐसा करना है, साधक के हृदय में ऐसी यदि भावना आए तब तो भाई होगा, और नहीं गाल बजाएंगे हंसेंगे दोनों काम करेंगे, विषयों का भोग भी रहेगा और भजन भी करेंगे, ये नहीं होगा। हम लोगों का अधिकांश लोगों का यही है, पूरा सुख ऐश्वर्य भोग हमारा बचा रहे, हमारा पैसा पॉकेट में ठीक रहे, एक पैसा खर्च न हो, फोकट में हम जाकर के कर भी आए भजन और वृंदावन की परिक्रमा भी कराएं और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और हमारा भोग भी ठीक रहे। हम जानते हैं जिसे ऐसा कोई ब्रह्मचारी हम लोगों में नहीं होगा जो 10-20 हजार पांच यहां तक ही और भी रखा होगा, तो जब हमारा वाला ठीक रहे सब उनके महाराज जी के घाट पर जाए और हमारी परिक्रमा हो जाए, भजन भी ठीक रहे और हमारा ये भी सुरक्षित रहे, भजन का ये तरीका नहीं भाई समझ लो। यहां पर समझ गए मिनट महाराज जी ठीक कह रहे हैं, अब हमको कुछ नहीं रखना चाहिए, आज जहां यहां से पाठ से समाप्त होकर के गए बस फिर वही बात, कुकुरे लेज 10 मन घी लागिए दिए सीधा करे छे, जखनी छेड़े दिलो की होलो आबार देखे जाए, समझो इसको आदर करो। यदि होगा तो होगा, उस फल विक्रानी के समान बनो, उसका कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं है, हमारा बेटा है, हमारा भैया है, हम उसके भक्त हैं, हमारे वो प्रियतम हैं, ये कोई भी संबंध नहीं है, एक साधारण ले लो, कहीं से दीक्षित भी नहीं हुई, हरि नाम भी नहीं लिया, किंतु है तो आखिर माथुर मंडल की, आज संकल्प कर लिया। ऐसे हम लोग भी संकल्प कर सकते हैं, आज से हमने सारी संसार की आकांक्षाओं को छोड़ करके आज से संपूर्ण से गुरु पर और ब्रह्म वैष्णव के अनुगत्य होकर के आज भगवान का भजन आरंभ कर देंगे, डू आर डाई, ऐसा यदि करे तो ये श्रवण करने का फल है। अभी पूज्य पात्र भी को महाराज जी भी बोल गए, नहीं? क्या श्रवण का फल क्या है? सनातन गोस्वामी तत्क्षणात क्या कर दिया? घर बार स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ करके चले। ये उनका भी परीक्षित महाराज, किसका? परीक्षित महाराज का ही, उनका भी दिया। भरत महाराज का दिया। इन लोगों ने हरि कथा सुना, क्या किया? मलवत, जुआवस्था में ही मलवत संसार को छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी छोड़ करके चले आए, रूप गोस्वामी क्या किया? आए जो एक सोना उनकी सेना सेवा के लिए भी एक रुपया का सोना था, उसको भी, उस सेवक को भी प्रत्याग कर दिया। भैया जरा ये गंभीर विषय है, इसको सीखना है। गुरु वैष्णव के आशय अनुगत्य में होगा तो वो हरि कथा जा करके बैठेगी, और नहीं तो हरि कथा वो हम मूर्ख नहीं है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, लादनी और संबित की सार है। वो समझ जाती है ये व्यक्ति कपटी धूर्त या कैसा है, या शुद्ध निष्कपट भक्त हो गया, तो भक्ति देवी पहुंचेगी। ये देवी है, मैं सोचो जैसे ऐसे ही कोई भाव है, वो सर्वशक्ति की वृत्ति है, वो सब कुछ जानती हैं, तब तो हमारे हृदय में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ये कथा भी क्या है? वही कथा भी सर्वशक्ति की वृत्ति, लादनी और संबित का सार है, तब तो वो कथा के माध्यम से यहां पर पहुंचेगी, अन्यथा नहीं पहुंचेगी। बस ऊपर से रिक्रिएशन हो रहा है, धन जन पुत्र परिवार ये परिचूर में रूप में आ जाएगा, लाखों कोटि रुपये भी आ जाएंगे, किंतु ये प्रेम धन नहीं मिलेगा भाई, समझे? इसलिए वो फल भी क्रैनी सब कुछ छोड़ करके असंकल्प, आज तक डू आर डाई, आज जैसे होगा उनका दर्शन करके आना है। आज गई तन में हो गई, चक्कर लगाया, गोविंद लो माधव लो, आंखों से आंसू भी बरस रहे हैं, हृदय द्रवित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। यदि ऐसे कोई कृष्ण को पुकारे तो क्या होगा? जैसे गोपियों ने तन्मय होकर के पुकारा रासलीला के समय के अंतर्ध्यान होने के बाद, कृष्ण कीर्तन के माध्यम में ही आएंगे, और वो भी वैसा गोपियों जैसा कीर्तन हो, कृष्ण के लिए ही हो, सुनकर के रुक नहीं सके। जरूर कृष्ण को आना पड़ेगा। मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि, जहां पर हमारे भक्त लोग कीर्तन करते हैं बस वहां पर आ जाता। एक बात को और समझना, यहां एक आदमी ने पाप किया, अपने पति को जान से मार डाला, किसी औरत ने भ्रूण हत्या किया, भ्रूण हत्या समझते हैं ना, पेट में बच्चा है और उसकी भी हत्या कर दी। एक आदमी ने अपने नियर डियर को भी हत्या कर दी, शराब पिया, जो पाप नहीं है वो सब कुछ पाप किया। भगवान के नामाभास से ये दूर हो जाएगा कि नहीं? ये जो पाप है, शुद्ध नाम की जरूरत नहीं, एक नामाभास के द्वारा ही ये दूर हो सकता है। और शुद्ध नाम हो और वैष्णव की हरि कथा हो तो फिर बात ही क्या। इसलिए अजामिल का देखो, उसमें विष्णु के दूतों ने कहा, तुमने जो पाप किया, इसने जो पाप किया, धर्म के ठेकेदारों ये क्या होने लग गया भाई, कपड़ा फिंच रहा है कोई, कौन है देखिए तो, हाँ तो क्या कह रहा था? धर्म के ठेकेदारों, अरे धर्म के ठेकेदारों, तू कहता ये इसने सब पाप किया, किंतु तुमको पता नहीं, ऐसा जगत में कोई भी पाप नहीं है जो भगवान का नाम ग्रहण कर ले और वो समूल वो पाप दूर न हो जाए, जरूर निश्चित रूप में हो जाएगा। इसलिए इसने पाप तो किया था, किंतु इसने अपने बेटे के नाम से स्मरण करके नारायण नाम उच्चारण किया, यह नामाभास हुआ। इसलिए सब पाप दूर हो गए हैं, कोई भी अब पाप नहीं है, चित्त इसका निर्मल हो गया है, इसलिए तुम लोग इसको जमपुरी में नहीं ले जाओगे। इस बात का जिसको वैष्णव के सुनने से, वैष्णव के मुख से सुनने से, और इस भागवत की कथा में जिसको विश्वास नहीं है, वो कैसा आदमी है बतलाओ तो? वो वैष्णव के निकट और भागवत के निकट अपराधी हो जाएगा। इसलिए इस चीज को समझो, एक नाम के आभार से जितने भी पाप हैं वो सब कुछ दूर हो गए हैं, इसको याद रखो। फिर उसके लिए अनुताप करने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को खूब भली बात, और नहीं होता है तो अब फिर महा अपराध होगा, उसके बड़ी दुर्गति होगी। और जो भगवान की ऐसी मधुर मधुर लीला कथाओं को सुन रहा है, जो अजामिल से कोटि गुण, कोई उपमा नहीं, करोड़ों करोड़ों गुण ये लीला कथाएं हो रही हैं गोविंद दामोदर माधवेती की, है? उनके यहां पाप कोई आ सकता है? और यदि नहीं, फिर भी विश्वास नहीं होता है, उसके समान नराधम कोई जगत में नहीं है, इस चीज को समझो। फाइल बिक्रिनी का जैसे वो अविष्ट होकर के नाम कर रहे, उसका कोई पाप अब रह गया कि नहीं? और मथुरापुरी की कोई नहीं, चित्त निर्मल, जाकर के अविष्ट होकर के बैठ गई और कीर्तन करने लगी, गोविंद लो माधव लो। अब कृष्ण से रहा नहीं गया, मैया के गोद से दूध पीते हुए उठ गए और देखा आंगन में ओ गेहूं की राशि पड़ी हुई है। गेहूं की राशि माने क्या? हीप ऑफ व्हीट। ओ बड़े जमींदार आदमी है ना, इसलिए उसमें से हाथ से उठाया। 2.5 वर्ष के कृष्ण, उनकी हथुली कितनी बड़ी, छोटी सी हथुली, और अभी नहीं जानते हैं कि हाथ ऐसे करने से सब गिर जाएगा, बस ऐसे उठा लिया और उसमें से सब गिर गया, बस यहां पर थोड़ा सा जहां पर जोड़ है यहीं पर रह गया। और मैया को छोड़ करके और घर में बैठी थी महिलाओं को छोड़ करके, जिधर से आवाज आ रही थी घर के बाहर में, फल बिक्रयणी की तरफ में गई। वो फल बिक्रयणी का इतना साहस नहीं था जो घर के अंदर में, द्वार के अंदर में प्रवेश करे, क्यों? थोड़ी सी निम्न जाति की उस समय, इसलिए वो तुरहिनी फल बिक्रयणी घर के अंदर में प्रवेश नहीं करके दरवाजे पर ही टेक दे रही, क्या कर रही है, फल लो, किसको सुना रही? यशोदा मैया को वो सुना रही है, कृष्ण को, बच्चों को लुभा रही है जो उनके मुख पर लार टपके। तो सचमुच उसकी बात को सुन करके कृष्ण के मुख में लार टपकने लगा और वो लेकर के चले नंगे, सोने की करधनी और सिर पर कैसा है? सिर पर उनका चूड़ा बांध दिया मैया ने, उसमें लगा दिया मोर पंख। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बस्तक चलाए कौस्तुभम नाशाग्रे बारुमक्तिकम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे गोपाल लेकर के चले, सब दाने गिर गए। देखा जब एक फल बिक्रयणी बैठी है, बस निकट गए, फल दो ये कह करके हाथ ऐसा झाड़ दिया, तो जो एक दो दाने थे वो वहां तो गिर गए और बाकी तो पहले ही गिर गए थे। फल बिक्रयणी देखती रह गई, आज ऐसा सुंदर लावण्य, विश्व ब्रह्मांड का सारा लावण्य मूर्तिमान होकर के, वेदांत का सिद्धांत और खुद वेदांत का प्रतिपाद्य अखिल ब्रह्मांडों के नायक छोटे शिशु के रूप में उसके सामने प्रविष्ट हो गए। देखती ही रह गई, शुद्ध बुद्ध खो गई। कृष्ण ने आवाज दी, अरे फल दो फल दो। जब उसकी कुछ ध्यान टूटा, दे करके बोली, फल तो दूंगी, एक बार तू हमको मैया तो कह दे, मैया। कृष्ण कहा, जी इसको मैया कैसे कह दे, स्तन दिया जो मैया कह दे, और ये नीच जाति की यदि मैया देख लेगी और सब लोग देख देंगी तो ये तो मुश्किल है। तभी जब कह रही है फल का इतना लोभ, कौन कृष्ण है, अखिल यज्ञ भूख है ये, आज उसके फल के लिए इधर देखा उधर देखा और उसकी गोदी में झट एक मिनट के लिए झट उसकी गोदी में बैठ गए। मैया ठोड़ी पकड़ करके मैया कह दिया और बस उठ करके खड़े होकर फिर फल दो फल दो। कितना उस फल विक्रेणी का कितना सौभाग्य। अब फल जो उठा कृष्ण के हाथों में देने, मीठे मीठे कृष्ण दिखलाने लगे, मीठे मीठे आम, पीले पीले, कोई लाल, कोई अमरूद, अंगूर इत्यादि जो फल थे उनके हाथों में भर दिए। तो उन्होंने देखा जी हाथ में तो आ नहीं रहे, ऐसे ले लिया। विश्व ब्रह्मांड जिनके लोम कूप में आज वो मांग कर मांग रहे हैं और हाथों में ले रहे हैं फल विक्रेणी का लेकर के, और उसके तरफ में देखा तिरछी चितवन से, और फिर वहीं से लौट गए और दौड़ते 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 मैया की गोदी में आ गए, मैया की झोली में सब दे दिया। मैया, अरे कहां से ले आया। और वहां पर और जो महल्ले की जो सब बैठी थी, एक एक फल लेकर के मैया देने लगी। वहां पर जितनी भी महिलाएं जो बैठी आई थी सबको देने पर भी वो जैसा का तैसा बना रहा, एक भी फल कम नहीं। और इतना मीठा, इतना सुगंधी, जो कृष्ण उससे लेकर के और उस फल को निज अपने चख लिया हो, अपने ग्रहण कर लिया, वो कैसा होगा समझो। इसके बाद में मैया देने लगी सबको, और उधर में क्या हुआ उस फल विक्रेणी का, कृष्ण तो उसका चित्त ले लिया, क्या है ना, दुकूल चौरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। दुकूल चौरंग माने क्या भैया, दुकूल चौरक क्या, यह कुल वह कुल दुकूल सब कुछ चोरी कर लिया, उनका मन चोरी कर ले। तो ये तुरहिनी साधारण बात क्या है, ये कोई बात नहीं, और उसका चित्त एकदम हरण कर लिया। ठगी सी बैठी ही रह गई, कब तक बैठी रही कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, बैठी के बैठी ही रह गई, पागली से उन्माद ग्रस्त हो गई, शरीर रहा मन कृष्ण के पास में चला गया। थोड़ी देर के बाद में कोई आया उसे हिलाया, अरे उठ यहां पर क्या बैठी है। थोड़ी देर के बाद में उठी, टोकरी को लिया सिर पर, खाली है कि भरती है ज्ञान नहीं। जब जमुना के किनारे लौट करके आई तो क्या किया, भाई ये भारी क्यों है, हमने तो सब फल दे दिए और ये भारी क्यों। देखा जैसे उतार करके देखा, देखा क्या, उसको कपड़ा हटाया, उसमें मणि माणिक्य हीरे जवाहर भरे पड़े हैं सब ऊपर से नीचे तक। कृष्ण को थोड़ा सा फल देने से कृष्ण क्या देते हैं, सर्वस्व दे देते हैं। फल की चिंता मत करो, मां फलेषु कदाचन, इसने ऐसा सचमुच में किया। और क्या, कृष्ण ने सब फलों का जितना है मूल्य, हीरा जवाहर आज सब कुछ भर दिया, ये तो ऊपर ही, और भीतर से क्या दिया उसको, क्या दिया होगा ये समझो। उन मादिनी कृष्ण विरह में, और उसने टोकरी को भरे हुए जमुना में फेंक दिया। जमुना ते फैले दिल। और कहां गई कोई पता नहीं, कहां गई होगी। कृष्ण गोलोक वृंदावन में ले गए होंगे, ये इस जगत में रहने वाली नहीं, कहीं जमुना में प्रवेश कर गया, कहां कर गई कोई पता नहीं। उन्मादिनी, जैसे गोपियां उन्मादग्रस्त हो जाती हैं, उन्मादग्रस्त हो गई। कृष्ण के दर्शन का यह फल है। कुछ लोग कहते हैं कि आज हमने कृष्ण का दर्शन किया सपने में, बोगस, नहीं दर्शन किया, झूठ मूठ का। दर्शन करने का फल तो देखो, ये जो कृष्ण का दर्शन करेगा और कृष्ण की ये लीला कथाओं को सुनेगा वो घर लौटेगा, लौटेगी। यदि लौट करके घर में हम जाते हैं तो ये क्या समझे, और जाकर के घर में लोगों से लड़ेंगे, मामला मुकदमा करेंगे अपने माता पिता भाई पर और पति पर, तो भजन हुआ समझो। और फिर संसार के प्रति आसक्ति रह जाएगी। निमज्जन्तम सघोषम, निमज्जन्तम अक्षयापयन्तम, अपने लोगों को, ब्रजवासियों को इस प्रकार से ऐसी ऐसी मधुर लीलाओं में, उसको भी समझ लो जो ब्रजवासी ही थी, कोई संबंध नहीं तो भी देखो। और जिन गोपियों को कृष्ण से संबंध है, हमारे प्रियतम है, ऐसा ज्ञान है, उनको क्या करते होंगे, कैसी कैसी लीलाएं। उस समय ये छोटी छोटी गोपियां कहां थीं, कहां थीं? राधा विशाखा भी अभी उल्लेख नहीं, उल्लेख कब से होगा, जबकि गोवर्धन उठाएंगे तब से होगा, इसके पहले अभी नहीं उससे उल्लेख होगा। उस समय में उनमें पहले आएगा कौन, क्या कहते हैं, मिलने से पहले जो प्रेम होता है, पूर्वराग इत्यादि होगा उस समय में, उनका वर्णन करेंगे। अभी ऐसे ही लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बोलो।
ना तो उसका कोई संबंध था और ना ही वह दीक्षित थी, उसने कोई दीक्षा भी नहीं ली हुई थी, तो फिर भी मथुरा प्रदेश की थी, इसका मतलब
अब वो पीछे समझेंगे वो जो क्या हुआ। हो सकता है कि ब्रज में फिर गोपियों के घर में जन्म लिया हो गया, और फिर अब वो गोपियों के अनुगत्य में उनसे कृष्ण की कथाओं को सुनते 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 हो करके फिर
गोपियों से कथा सुनाई। हाँ, आज तक की स्थिति में भी तो पिछली कुछ ना कुछ साधना जरूर रही होगी,
हो सकती है। कृष्ण है तो कृपाशाली है, कब कैसे कृपा करते हैं, कोई जरूरी नहीं है पूर्व जन्म की सुकृति हो, तो फिर अहेतु की कृपा, काली की कौन सी कृपा थी, अहेतु सुकृति थी। इसलिए उस पर कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है, वैष्णव और भगवान की कृपा का कोई तर्क मत खोजो, वो ऐसे कृपालु हैं, वैष्णव लोग इतने कृपालु हैं कि कब यदि उसका विरोधी है उसको कृष्ण प्रेम दे दे, और जो उनका सेवा कर रहे हैं उनको नहीं भी दे, वो स्वच्छंद कृष्ण जैसे पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसलिए बिना वैष्णव के कृपा के भक्ति नहीं होती है। विदाउट द मर्सी ऑफ वैष्णव एनी कैनॉट प्लेस कृष्ण। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादात नगति कुतोपी, वैष्णव की कृपा के बिना कोई गति है कहीं। कृष्ण के प्रसन्न, भगवान यदि अप्रसन्न हो और वैष्णव लोग प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण को प्रसन्न करा लेंगे, किंतु कृष्ण प्रसन्न रहने पर भी भक्त प्रसन्न है तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा, इस चीज को समझो। इफ वैष्णव इज हैप्पी और एवरीथिंग इज ओके, ही इज सेटिस्फाइड, एवरीथिंग इज ओके, कृष्ण इज सेटिस्फाइड, बट गुरु एंड वैष्णव आर नॉट सेटिस्फाइड, और कृष्ण मर्सी कैनॉट बी देयर। So try to realize all this. अभी वैष्णव की कृपा कैसी है, वैष्णव के कृपा के बिना कैसे कोई भजन नहीं कर सकता, उसकी सिद्धि नहीं है। अभी एक आप खड़े होकर के एक कीर्तन कीजिए, और बेस्ट भाव के अनुसार में उसकी व्याख्या करते हुए कीजिए, और सब वैष्णव लोग उनका रिपीटिशन करेंगे कीर्तन में।
আমার সীতা গুরুজিনী বলেছেন, তবে এরা তো বৈকুণ্ঠের দূত, বৈকুণ্ঠের পার্ষদ, তাদের প্রেরণাতে এখানে এসেছেন, তাহলে ভবব্যাধির চিকিৎসক, ভবরোগের ডাক্তার.
হি ইজ টেলিং দ্যাট প্রভুপাদ ইউজ টু টেল অ্যাট দি টাইম অফ নবদ্বীপ পরিক্রমা, থাউজেন্ড অ্যান্ড থাউজেন্ড পিলগ্রিমস আর কামিং হিয়ার ইন নবদ্বীপ পরিক্রমা, বাট উইথ রিটার্ন টিকট.
আমরাও সেইভাবে
আমার আছে with return ticket that after doing parikrama we will return to our wives and children, but anyone does not come that way, we will go to Vaikuntha and Golok, never. So I know that you have all arranged your tickets, return tickets also. Have you arranged that our ticket should be that cancelled and our ticket for Golok Vrindavan should be collected? So try to do.
Apnara nirbhaye hari katha sunben ma. Doctor rugi chikitsa kore kintu মা ছেলেকে খুব ভালোবাসে, একটা ছেলের ফোঁড়া হয়েছে, মা বলছে ডাক্তার বাবু আমি ছেলেটাকে খুব ভালোবাসি বাবু, তুমি আমার ছেলেটাকে অপারেশন না করলে ভালো হয়, আর সে ছেলেও ডাক্তারবাবুকে দুই একটা চট্টর মেরে দিছে, যখন অপারেশন করেই যখন রোগ মুক্ত হয়ে গেল, বলছে ডাক্তারবাবু আপনি আমার উপকার করে দিয়েছেন. তা আমরা হচ্ছে ভবরোগের রুগী আর আরা হচ্ছে ভবরোগ চিকিৎসক ডাক্তার, এরা অপারেশন করবে আমাদের চিকিৎসা, চেঁচা চেঁচা চিৎকার করলেও তো এরা শুনবে না, এরা আমাদের ভবব্যাধি চিকিৎসা করবেই. আর কি আমাদের কোটি জন্মের সুকৃত ভাগ্য ছিল, নতুবা আজকের সেবা কুঞ্জে রাধারানীর নিকটে বসে বৃন্দাবন যার হৃদয়, যার বৃন্দাবন হৃদয় থেকে বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে বসে আমরা মহাপুরুষের কাছে হরিকথা শুনছি. তাদের দর্শন হলে তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি জীবগণ সর্বমোট তাদের ভববন্ধন মোচন হয়। সেই সমস্ত মহাপুরুষ কাছে হরিকথা শোনা এবং বৃন্দাবন ধামে আমরা এসেছি, বহু স্বীকৃতি না থাকলে আসতে পারবো না বহু জন্মে. তেনেই জন্ম সতের বিবাহ সুদেব সমর্চিতম তন্মুখ হরি নামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত, বহু বহু জন্মের কিছু স্বীকৃতি পূর্ণ ফলেই সেই সাধু সঙ্গে আমরা এসেছি, সাধু সঙ্গে পরিক্রমা করছি মহাত্মের কৃপার দ্বারা. মহারাজ অসুস্থ, চার মাস তিনি সেই বিদেশে গিয়েছে, আবার আমাদের নবদ্বীপে গিয়েছে, কলকাতায় গিয়েছে, আবার এখানে এসে আপনাদের নিয়ে ঘুরেছে. অতএব বৈষ্ণবের কৃপা চাই, আমি একটা বৈষ্ণব মহিমা গাইব, তবে আমার লোভ ছিল কিছু আজকের মহারাজ তো গোপালের কথা, আবার রাস্তায় যদি সময় হয় মা গোপালের কথা শোনাবো আপনাদের. দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি, বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে সমুদ্রের জল কোনদিন ফুরাবে না মা, এইরকম এসান মহাপুরুষগণের যে হৃদয়ের গোবিন্দের কথা শত শত জীবকে এরা শোনাচ্ছেন, শত শত ব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ধার করে, এদের হৃদয় কোনদিন খালি হবে না. অতএব আমরা সেই বৈষ্ণবগণের চরণ ধরতে হবে বাবা, তাদের চরণ ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই. রাধা রা আছে প্রথম, ধা আছে পরে, ঘুরি যদি বলে দেই ধা আগে দেই আর রা যদি পরে দেই তাহলে কি হবে, ধারা. আমাদের সেই গোবিন্দ গুরু বৈষ্ণবের চরণে আমাদের কানতে হবে, সরল মনে নিষ্কপট হৃদয় হতে হবে. আমরা নিষ্কপট হতে পারি না, তবে তাদের কৃপা যদি হয় তাহলে আমাদের কোনদিন যদি মঙ্গল হয়। দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি, দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি, একবার দিয়া পদ ছায়া সদয় আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমায় তোমার চরণ আমি তোমার চরণ ধরি তোমার ওগো পরম দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার চরণ ধরি পরম দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর তোমার একবার কৃপা বলে সাধন করো তোমার চরণে ধরি কৃপা বলে সাধন করো তোমার আমায় চরণ ছাড়া করো না গো আমি অধম পতিত বলে আমায় চরণ ছাড়া করো না গো অধম পতিত বলে আমায় আমি ওই চরণে শরণ নিলাম আমায় চরণ ছাড়া করো না গো ওই চরণে চরণ নিলাম চরণ একবারে জয় দাও ওই পরম দয়াল বৈষ্ণব গণের জয় দাও ওই দয়াল ঠাকুর গুরুদেবের জয় দাও জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর আমার নাহি পাই বল হরিনাম ও সংকীর্তনে একাকি আমার নাহি পাই বল হরিনাম ও প্রভু তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ জলের সান্নিধ্যে পদ্ম থাকে যত সময় পদ্মটা জলের সান্নিধ্যে থাকে সূর্যদেব তাকে বিকশিত করে যখন ওই জলের থেকে তুলে বাবা ডাঙ্গায় ফেলে দিবেন সেই সূর্যদেব কিন্তু বাবা ফুলটা শুকিয়ে যাবে এই আমারা অনন্ত যে জীব ক্ষুদ্র এই জন্য আমরা অবিদ্যার দ্বারা বশীভূত হয়ে যাই গুরু বৈষ্ণবের নিকটে যত সময় থাকব তাদের কৃপাতে আলোকে যত সময় থাকব জীবের হৃদয়টা বিকশিত হয় বর্ধি থাকে আনন্দ থাকে আবার যখন ঘুরে গে মা সংসারের মধ্যে পড়ে যাবেন সংসারের ভব সংসার যে ঘূর্ণি পাকে তখন কোথায় যায় কি হোক তার কে বা রক্ষা করে তখন আর কুল কিনা পাই না দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমায় তোমার চরণ ধরি দিয়া পদ আমার ছয় বেগ দমি ছয় দোষ সধি ছয় বেগ আমার ছয় গুণ দেহ দাস ছয় গুণ দেহ গুরু বৈষ্ণবকে আমরা এই চোখের দ্বারা দেখতে পাবো না বাবা তাদের যদি কৃপা হয় তবে তাদের চিনতে পারবো তার কৃপা ছাড়া তাকে চেনা যায় না যেমন সূর্যের আলোর দ্বারায় জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় জল জগতে আলো প্রকাশ করে আর ভগবানের কৃপার দ্বারাই গুরু বৈষ্ণবের কৃপা শক্তির দ্বারা আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যাবে আর হৃদয়ের শত আলো প্রকাশিত করে দিবে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, কৃষ্ণ সে তোমার তোমার সকতি আছে, তোমার সকতি প্রভু তুমি দিলে দিতে পারো, তুমি ওগো কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ের ধন, কৃষ্ণ দিলে দিতে পারো, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ের ধন, ওগো কৃষ্ণ ধনের ধনী তুমি, কৃষ্ণ দিলে দিতে পারো, কৃষ্ণ ধনের ধনী তুমি, কৃষ্ণ বর্তমানে মানকুর গ্রামে জীবন ঠাকুর নাম, তিনি শিবের আরাধনা করতেন। আর একদিন শিব ঠাকুর দর্শন দিয়েছে, ব্রাহ্মণ তুমি এত কষ্ট করে আরাধনা করেছো, কি চাই তোমার? প্রভু আমি ব্রাহ্মণ লোক, গরিব, আমার কন্যা দায়গ্রস্ত, ঠাকুর তুমি কিছু জগৎ অর্থ করি দাও। শিব ঠাকুর দেখলো এ অহিক জগতের ধন অর্থ চাইছে, একে দিব না। বলে বাবা আমার কাছে কিছু ধন টন যা নাই, যাও বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনে যাও, এক মনে জপিতেছে হরি নাম, সনাতন গোস্বামী তার কাছে আছে ধনেরই সন্ধান। সনাতন গোস্বামীর কাছে এসেছে, বলে কি বাবা ব্রাহ্মণ তুমি কি জন্য এসেছো? বলে বর্তমানে মানকুড়ে আমার বাড়ি জীবন ঠাকুর নাম, আমি শিবের আরাধনা করেছিলাম আর শিব ঠাকুর কাছে আমি কন্যা দায়গ্রস্ত কিছু অর্থ সম্পত্তি চাইছে, আর শিব বলে আমার কাছে কিছু নাই, সে সনাতন গোস্বামীর কাছে যাও, সে বড় ধনী। বলছে শিব ঠাকুর তো মিথ্যা কথা বলবে না, বৈষ্ণব আনাক যথাসম্ভব। তখন মনে হয় ও ঠিক ঠিক বটে, একদিন যমুনায় চান করতে গিয়েছিলাম, পেয়েছিলাম সেই পরশ মানিক, আর বালিতে পুঁতে রেখেছি, যদি কারোর কোনো দিন কাজে লাগে। এ বাবা চলো 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 এই বালিটা খুঁড়ো দেখি। খুঁড়ে দেখলেন একটা পরশ মানিক, জীবনে কোনোদিন তো পরশ মানিক কি কিছুই দেখেনি। গুরুদেব এইটা নিয়ে কি হবে, তুমি পয়সা করি অর্থ টাকা পয়সা দাও। বোকা ছেলে, সাত রাজার ধন এক পরশ মানিক, সাত রাজার ভান্ডারে এটা থাকে না, তুমি নিয়ে যাও, তোমার কন্যা তো বিয়ে হবে আরো বহু ধন অর্থ হয়ে যাবে। ধনবিয় সজ্জনী সঙ্গতে কাও ভবতি ভবার নব তরণের নৌকা। বৈষ্ণব ঠাকুর আবার পাঠিয়ে দিলেন কোথায়, এহেন মহাপুরুষ মুক্ত মহাভাগবত সনাতন গোস্বামীর কাছে। আর তার কাছ থেকে ওইটা নিয়ে খানিকটা যাই গিয়েছে, ওই যে তার পরশে দেখি হলো, তাকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা গিয়ে চিন্তা করলে, উনি বলছে সাত রাজার ধন এক পরশ মানি, তাহলে উনি ওইটাকে অগ্রাহ্য করে তুচ্ছ বলে বাটি বালিতে কেন গেড়িয়ে রেখেছে। আবার ঘুরে এসেছে, কি হলো ঘুরে এলে, প্রভু আপনি বললেন সাত রাজার ধন এক পরশ মানিক, আপনি একে তুচ্ছ করে ওই মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছেন কেন? একে তো যত্ন করে রাখেন নাই, আদর করে। কি ধনে হইয়া ধনী মনি রে মানো না মনি, সেই ধনের খানি গাভি মাগিন তো শিরে, এত বলি ফেলিল মানিক নদী রে, ছুঁড়ে ফেলি দিল। দিল্লির সম্রাট তখন থেকে বাবা পরশ মানিক, এখন যদি আমাদের বৃন্দাবনে মনে হয় এরূপ সনাতন গৌরী মঠে একটা পরশ মানিক উঠেছে, ও বাবা সঙ্গে সঙ্গে মেলে দেখে দেবে, সকলে নেওয়ার জন্য ছটপট করবে, বাবা পরশ মানিক একটা পেলে আমি ত্রিভুবনে রাজা হয়ে যাব। আর সনাতন গোস্বামী হোসেন স্যার প্রধানমন্ত্রী সেটাকে পা দিয়ে গেড়ে রেখে দিচ্ছে। তখন বলছি এবারে বাবা, ওই যখন পরশ মানিককে তুমি তুচ্ছ করে নদীতে ছুঁড়েছ, এর আগে তোকে দিতে পারতাম, দেইনি কেন জানো? ওর অসারত্ব তুমি বুঝবে না, এই জন্য তোকে দেইনি। এবারে আই বাবা, পরশ মানিককে তুচ্ছ করেছ, এবারে গোবিন্দ মানিককে দিলে তোমরা আদর করে থাকবে। সেই রকম ভাবে গুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের কি দিতে চাইছে মা? এই জগতের ধন অর্থ সবই নষ্ট হয়ে যাবে, দুদিন পরে চলে যাবে ওই জগতে সবকিছু। তারা দিতে চায় আরে বাবা তোমার ওই ক্ষুদ্র আনন্দেতে থাকবি, আরে আয় আমি সেই বৈকুণ্ঠে গোবিন্দের প্রেম সরোবরের সঙ্গে তোকে সংযোগ করে দেয়, সেই আনন্দ কোনোদিন জীবনে ফুরাবে না। আর ঐক জগতের যে আনন্দ, আনন্দের পেছনে দুঃখ আছে। তাই বলছে এইবার জামাই কর দয়া, এইবার ওগো পরম দয়াল বৈষ্ণবী ঠাকুর, এইবার জামাই কর দয়া, পরম দয়াল আমি ওই চরণে শরণি নিলাম, এইবার জামাই কর দয়া, ওই চরণে শরণি নিলাম। তাই বলছি গোবিন্দের কাছে কে নিয়ে যাবে মা, তার যে ভক্তগণ নিজজন তারাই যদি বলে দেয় তবে তিনি কৃপা করবে, ভক্তি দেবী তার হৃদয়েতে আসবে। ও বিরাট পাণ্ডিত্য বহু কিছু থাকলেও মা ভক্তি দেবী কৃপা হবে না, কিছু অনুভূত করবে না। হে গুরু বৈষ্ণবগণ একটু কৃপা করুন যেন সেই ভগবত বিষয়ে কিছু অনুভূতি হয়। একবারে জয় দাও জয় দাও ওগো পরম দয়াল বৈষ্ণবগণের, জয় দাও জয় দাও ওগো পরম দয়াল বৈষ্ণবিন্দের, জয় দাও। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি নিতাই গৌর, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। মিছে মায়া বসে সংসার সাগরে, মিছে মায়া বসে পড়িয়াছিলাম আমি, পড়িয়াছিলাম করুণা করিয়া দিয়া পদ ছায়া, আমারে তারিলে তুমি করুণা, শুনো শুনো বৈষ্ণব ঠাকুর, শুনো শুনো আমি তোমার চরণে সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ করো দূর, তোমার চরণে সঁপিয়াছি মাথা, আমি তোমার চরণে সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ করো দূর, তোমার চরণে সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ আমার জাতির গৌরব কেবল রৌরব, জাতি অভিমান মঞ্চে আমরা আছি মা, রূপের গৌরব আমার প্রচুর রূপ আছে, বলছে থাকে না মা। মা কুরু ধন জন জীবন গর্বম নিমেষাত হরতি কাল সর্ব, আর আমার বড় পাণ্ডিত্য আছে, আমার প্রচুর ধন আছে, আমার বড় বিদ্যা আছে, জন্ম ঐশ্বর্য সুত শ্রী। এক বোতল মদ খেলে কি হয় মা, নেশার ভরেই মাটিতে পড়ে যায়, পুনঃ পুনঃ পিত্তা পিত্তা মাটিতে লুটিপুটি পড়ে। আর এই যে চারটা মত জন্মশ্বর্য শীত শ্রী এদো মানজ প্রমাণ, এই চারটা মত যদি কারোর একসঙ্গে জুটে যায় বাবা, তার হলে তার কি হবে বলে দেখি। এই জন্য বলছে আমাদের জাতি মত বিদ্যা মত এগুলাকে দূরীভূত করতে হবে, সরল না হলে কোন দিয়ে বৈষ্ণবের কাছে যেতে পারবেন না। গুরু মাই বলতে দেখ দেখ এই ছেলেটা মন্দিরে পরিক্রমা হচ্ছে, ও পরিক্রমা করছে না কেন, ওই এলা একলা তুলসী রেখে ওখানে ঘরের মধ্যে পরিক্রমা করছে। বলে দেখ বাবা ওর মধ্যে বলছে যে অবিদ্যাপদে ধরেছে, ও স্বতন্ত্রতা কেন, মন্দিরে সকলে পরিক্রমা করছে, ও আলাদা করে, ও মনে করেছে খুব ভক্তি করতেছি, দুদিন পরে ভক্তি থাকবে না বাবা, কোথায় উড়ে চলে যাবে। জাতির গৌরব কেবল রৌরব, জাতির গৌরব বিদ্যা সে অবিদ্যা কল, বিদ্যা সে অবিদ্যা সা বিদ্যা তন্মতির জয়া। সেই বিদ্যা বিদ্য বলে জানি যে বিদ্যার দ্বারায় ভগবানের পাঁচ পদ্মে আমাদের মতি যায়, নাহলে কি হবে? জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করে গাধা। জাতির গৌরব কেবল রৌরব, জাতির গৌরব বিদ্যা সে অবিদ্যা কল, বিদ্যা সে অবিদ্যা গোসধিয়া আমার নিতাই চরণে সপয়ে যায়ু কো জালা, সধিয়ায়া মানে নিতাই সপ যায়ু গো তোমার কৃপায় আমার হৃদয়, তোমার কৃপায় স্ফুরুক যুগল না আজি কয়ে কৃষ্ণ দাস আমার হৃদয়ে জাগু কোশি রাধা শ্যাম, দাস আমার হৃদয়ে জাগু কোশি বল সেদিন আমার কবে বা হবে, ওই ধামবাসী গণের কৃপা পাব সেদিন আমার কবে বা হবে, ধামবাসী জনের কৃপা পাব সেদিন আমার ব্রজবাসী জন মোর প্রাণ ধন, ব্রজবাসী জন মোর প্রাণ ধন, ব্রজবাসী দেখাও শ্রী রাধা নাথে, দেখাও শ্রী রাধা গজাইবার আমায় কর দয়া, এইবার অগধাম বসি বসিন বিগুন, এইবার আমায় কর দয়া, ধাম বসি আমায় ধামের স্বরূপ দেখা যা, এইবার জামায় কর দয়া, ধামের স্বরূপ আমায় ধামের স্বরূপ দেখা যা, এইবার জামায় কর দয়া, ধামের জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল,
ইউ আর থিংকিং that we have remitted 4,000 rupees, 300, 3,000 rupees, 250 rupees. I think that first day are hearing so beautiful, powerful Harikatha and Kirtan. I think that covered in a day. Don't think that we have remitted so much money. Nothing you have done. You cannot pay anything what we are giving. So we are all debted to Vaishnava. Always think. You should not think that we have given. Oh, 4,000 rupees we have. Nothing, nothing, nothing. So powerful Harikatha and so beautiful Kirtan is going on. Really, these are Kirtan, very powerful. He told one thing. You should try to remind this. He told that if we are in collective way, Guru, Vaishnava, all are here. And we are observing this Kartik month. Hearing so high class of powerful and sweet, powerful these pastimes of Krishna. If anyone thinks that, oh, nothing to gain in this collective way, I should chant 1 lakh name separate and I should do parikrama of Govardhan by Dandavati, one time, one like this, in so many days, and I will take a vow for this. हम लोग प्रतिज्ञा करके नियम अनुसार से ये करेंगे किंतु अकेले कर रहा और हम लोग एक कलेक्टिव रूप में ये कर रहे हैं कोटि कोटि जन्मों में अकेला करके कुछ नहीं कर सकता वो चाहे लाख वो करे इसका उदाहरण हम दिखलाते हैं एट द टाइम ऑफ आवर गुरुदेव देयर वाज डिसिपल ऑफ गुरुदेव आवर गॉड ब्रदर यंगर And we used to do parikrama with our Gurudev, hearing these sweet pastimes and very powerful. And taking prasadam as you are taking prasadam. He saw that, oh, they are not doing actually niyam seva. They are taking rice, dal, chapati, and some days festivals, oh, sweet rice and all other things. And they don't starve. Oh, I should go alone. Wo Govardhan mein chala gaya. Alone. And he used to chant 1 lakh Harinam daily. And do parikrama. With how? Dandavati parikrama. He used to do. He neglected Guru Maharaj and our this society. And he used to start only taking something, very little. After that, he thought that I am successful in doing so. My doing this is successful. They are doing nothing, all. Guruji also not falling. The principles, all these things. What happened? Hua kya? Wo dekha? जैसे ये ठीक नहीं है भिक्षा मांगना ये ठीक नहीं हम रिक्शा चलाएंगे भले ही किंतु अपने जीवन उपार्जन करके हरिनाम करेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और भजन करेंगे और 1 लाख हरिनाम करेंगे देन क्विकली ही पॉट ए रिक्शा दैट आई शुड मेंटेन माई सेल्फ Not begging and not like this. So he bought a rickshaw and he began to pull it here and there, chanting name. But his name was reduced. After some time, a desire to marry came. But he was black, no money. So a blacklist lady, thrice married. And he pulled so much riksha and collected some money and gave to her. Teeth was like this, very ugly. He offered himself in that lady's lotus feet. And then went left Vrindavan. Vrindavan left. And then he began to take fish, eggs and everything. And name was gone totally. And where is Govardhan Parikrama? Where is 1 lakh? And where is all these things? So you should try to realize all these things. Vaishnava ka sanga chhod karke aur guru ka sanga chhod karke harinam karenge aur niyam seva karenge, unka phal bhi vaisa hi hoga. Aisa dhruva samjho. Isliye vaishnava ke sanga mein suno. Hum upar mein baith karke suno. I will sit there, not in council of Vaishnavas, in the eyes of Vaishnava front. I will be upside. This will ruin them. So try to realize these facts and come here in the front of Vaishnavas, in the eyes in there. Be operated. They will operate all these things, bad things. He has told so many things. I quoted one list, very little thing. So try to realize all these things. Be, remain situated in the association of Vaishnava. Don't be alone and try to chant and to take niyam seva alone. It cannot save you. Never, never and never. Ye aapki raksha nahi kar sakta. Jahan yahan se jayenge, kuch din karenge, aur phir wahi bhagade, sehi bhagade, sehi bhagade. Isliye Vaishnava ke association mein khao, piyo, kanth tak khao, aur kya karo?
Akanth kriya karo,
prasad. Akanth प्रसाद सेवा करिया वैष्णव के शोषण में रहो, खाओ पियो और भगवान का भजन करो. सामूहिक रूप में जो चीज होती है, यहाँ पर गुरु बैठा है, वैष्णव बैठे हैं, और उसको छोड़ करके अकेले में नियम सेवा करेंगे, भाई इससे बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा. ट्राई टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स, ट्राई टू बी इन द आईज ऑफ वैष्णवास, दे कैन सेव. Otherwise, we cannot save ourselves. Gaur Premananda. In the at 11 or 10, you should go on the house of Mahesh and Naveen and all other. You should try to do kirtan there, and at 11, I may come there. And after that, taking prasadam, then. Oh, at 4 you should again come. And very powerful Harikatha will be done. Yes. Ye Giriraj ji se aaye hue, unhi ki ye seva, unhi ka estate tha. Badi seva ki pari